नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। अडानी ने बुधवार को शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और उनका समूह भारत की वृद्धि की कहानी में योगदान देना जारी रखेगा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच दल SIT या केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी CBI से जांच का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI अपनी जाँच 3 माह में पूरी करे। अडानी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। अडानी ने कहा कि भारत की वृद्धि की कहानी में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पूंजी बाजार नियामक SEBI को अपनी लंबित जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि इस मामले में किसी और जांच की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर मूल्य में हेरा फेरी के आरोप लगाए गए थे। यह रिपोर्ट आने के बाद समूह की कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में भारी गिरावट आई थी। हालांकि समूह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। महंगाई कम करने के बावजूद कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में धीमी बढ़ोतरी की वजह से दिसंबर में देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि घटकर 18 माह या 1.5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। बुधवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण से ये जानकारी मिली है। HSBC इंडिया के विनिर्माण PMI सर्वेक्षण से पता चलता है कि कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में नरम वृद्धि हुई। हालांकि आगामी वर्ष के लिए कारोबारी भरोसा मजबूत हुआ है। ये सर्वेक्षण S&P ग्लोबल द्वारा किया गया है। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI दिसंबर 2023 में घटकर 54.9 पर आ गया। ये इसका 18 माह का निचला स्तर है। नवंबर 2023 में ये 56 के स्तर पर था। PMI की भाषा में 50 से ऊपर का मतलब विस्तार से है, वहीं 50 से कम का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल ने HSBC इंडिया विनिर्माण PMI करीब 400 विनिर्माताओं के खरीद प्रबंधकों को भेजी प्रश्नावली के जवाब के आधार पर तैयार किया है। HSBC की भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार दिसंबर में भी जारी रहा। हालांकि पिछले महीने वृद्धि की रफ्तार धीमी रही, उत्पादन और नए ऑर्डर दोनों की वृद्धि में नरमी आई है। हालांकि नवंबर से भविष्य का उत्पादन सूचकांक बढ़ा है। वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने के बावजूद क्षेत्र ने दिसंबर में मजबूत विस्तार दर्ज किया है। पैनल में शामिल विश्लेषकों का कहना है कि अनुकूल बाजार परिस्थितियों, मेलों और प्रदर्शनियों की वजह से दिसंबर में विनिर्माण उत्पादन बढ़ा है। दिसंबर के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में वस्तुओं के उत्पादकों की अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में संघीय सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज $34,000 अरब के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कर्ज के स्तर से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में सरकार को देश के बही खाते को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। अमेरिकी वित्त विभाग ने मंगलवार को देश की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये राजनीतिक रूप से बंटे देश के लिए तनाव पैदा करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार बिना वार्षिक बजट के सरकार के कामकाज के कुछ हिस्से ठप हो सकते हैं। रिपब्लिकन सांसदों और व्हाइट हाउस ने पिछले साल जून में देश की ऋण सीमा को अस्थायी रूप से हटाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसे ऐतिहासिक चूक या डिफॉल्ट का जोखिम टल गया था। यह समझौता जनवरी 2025 तक चलेगा। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज कहीं अधिक तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने जनवरी 2020 में वित्त वर्ष 2028-29 में सकल संघीय ऋण $34,000 अरब पर पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन 2020 में शुरू हुई कोविड महामारी की वजह से कर्ज इस स्तर पर अनुमान से कई साल पहले पहुंच गया है। राष्ट्रीय कर्ज का फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं दिख रहा है, क्योंकि निवेशक संघीय सरकार को कर्ज देने को तैयार हैं। ये कर्ज सरकार को कर बढ़ाए बिना कार्यक्रमों पर खर्च जारी रखने की अनुमति देता है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दशकों में कर्ज का ये रास्ता राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई बड़े कार्यक्रमों को जोखिम में डाल सकता है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया VIL के मुख्य नियामकीय एवं कॉरपोरेट मामलों के अधिकारी पी बालाजी ने इस्तीफा दे दिया है। BSE को बुधवार को भेजी सूचना में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि बालाजी 10 जनवरी 2024 से कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी के पद पर नहीं रहेंगे। अपने इस्तीफे में बालाजी ने लिखा, वोडाफोन आइडिया ने मुझे 9 साल से अधिक सेवा का अवसर दिया है और मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने मिलकर जो काम किया है उसने कंपनी में बदलाव लाने में मदद की है। कंपनी ने ये नियामकीय सूचना के साथ पत्र साझा किया है। बालाजी ने आगे कहा कि अपने जीवन के इस मोड़ पर वो VIL के बाहर व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, मैं तत्काल प्रभाव से कंपनी की सेवाओं से इस्तीफा देना चाहूंगा। अगर कंपनी मुझे जल्द से जल्द मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती है और अनुबंध संबंधी नोटिस अवधि की बाध्यता समाप्त कर देती है तो मैं आभारी रहूंगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।